ओम शांति। बहुत सुंदर टॉपिक सजेस्ट किया गया आज के लिए, रिफिल एंड रिफ्रेश। हम इंसान कभी भी खाली पसंद नहीं करते, है ना? कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कम होता है उसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत भूख लगी तुरंत भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं, प्यास लगी तुरंत प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है और एक डंडी बची है तो दिल में बहुत घबराहट शुरू हो जाता है, कहीं पूरा वो डेड ना हो जाए। तो तुरंत हम कहां ढूंढेंगे, क्या ढूंढते हैं, पावर सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि फिर बहुत जल्दी उसको रिचार्ज करें। गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, रिजर्व में आ चुकी है, तो घबराहट होती है, तुरंत हम रिफिल करने की कोशिश करते हैं। कहां ना कहां हम ढूंढते हैं पेट्रोल पंप। ऐसे हम जीवन में कुछ भी अगर कुछ खजाना कम होता नजर आ रहा है तो उसको फिल करने की कोशिश करते हैं या रिफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आत्मा की शक्तियां कम हो रही हैं तो उसको रिफिल करने की कोशिश की है, दुख महसूस हो रहा है तो वो क्यों दुखी है वो देखने की कोशिश की है, उसको रिफिल करने की कोशिश की है, तो नहीं। केवल हम बाहरी रूप से अपने आप को फुल रखने की कोशिश किया है लेकिन आंतरिक रूप से हम कहीं ना कहीं खोखले हैं, खाली हैं। तो उसको आज हम कोशिश करके समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम उसको रिफिल करें, क्योंकि अभी तक जो हम केवल बाहरी रूप से एनर्जाइज, रिचार्ज, रिफ्रेश करने की कोशिश किया है तो उसका नतीजा क्या हुआ है। टुडे वी हैव टॉल बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स, वाइड फ्रीवेज बट नैरोवर व्यू पॉइंट्स, वी स्पेंड मोर बट एंजॉय लेस। बहुत खर्चा करते हैं लेकिन एंजॉय कम करते हैं। वी हैव मोर नॉलेज, ज्ञान ज्यादा है लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस कम हो चुके हैं। वी हैव हायर इनकम्स बट मॉरल्स कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। दीज आर टाइम्स विथ मोर लिबर्टी, फ्रीडम ज्यादा है बट लेस जॉय, विथ मच मोर फूड बट लेस न्यूट्रिशन, वी हैव मोर मेडिकेशंस बट लेस हेल्थ। मेडिसिन, नए नए बीमारियों की मेडिसिन इन्वेंट किया जा रहा है लेकिन फिर भी नई नई बीमारियां आते हुए नजर आ रहे हैं। वी रीच द मून एंड बैक बट वी फाइंड ट्रबलसम टू क्रॉस ओवर अवर स्ट्रीट एंड मीट आर नेबर्स। दीज आर द डेज इन विच टू सैलरीज गेट होम, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं तो टू सैलरीज गेट होम बट इंक्रीज्ड डिवोर्सेस। दीज आर द टाइम्स ऑफ फाइनर हाउसेस बट मोर ब्रोकन होम्स। सुपरफिशियल, बाहरी रूप से हम डेकोरेट करने की कोशिश किया लेकिन व्हाट अबाउट द होम्स, हाउसेस को डेकोरेट किया लेकिन होम्स। दिस इज अ टाइम व्हेन देयर इज टू मच इन द शो विंडो बट नथिंग इन द स्टॉक रूम। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक अ लिविंग बट नॉट अ लाइफ, वी हैव एडेड इयर्स टू लाइफ बट नॉट लाइफ टू इयर्स। तो आज की ये विडंबना है, ये सिनेरियो है, तो बाहर हम एम्पावर कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, तो अंदर खोखले होने के कारण से तो ये दुनिया, वी फील दैट इट्स बर्निंग, इट्स नॉट इन फिजिकल टर्म्स बट लेकिन जो नेगेटिविटीज और ये सब कुछ जो बढ़ गया है लाइफ में हर इंसान के, तो दैट फायर इज किलिंग द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसीज में नजर आ रहे हैं, गिल्ट, फियर, अबंडनमेंट, एगोटिज्म, मना अहंकार, लैक ऑफ फेथ, डेथ, लोनलीनेस। लोगों भीड़ के बीच में रहते हुए भी हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं, डिसीट एंड लाइज, धोखा धड़ी, गुस्सा, अनसर्टिनिटीज, अनिश्चितता, ये सारे नेगेटिविटीज और वीकनेसेस बहुत ज्यादा मात्रा में वो नजर आता हुआ दिखता है। लेकिन अभी इसको हम कैसे निकालें और पॉजिटिविटीज से कैसे भरें? जैसे इस कमरे में अंधेरा है, अगर अंधेरा है उसको रोशनी करने के लिए, इसको प्रकाशित करने के लिए क्या करेंगे? प्रकाशित करने के लिए क्या करेंगे? लाइट्स जलाएंगे, दिया जलाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे, या फिर खिड़की दरवाजे खोल देंगे ताकि सनलाइट को अंदर आने देंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये अंधेरा भाग जाओ भाग जाओ। अंधेरे को भगाने की चेष्टा हम नहीं करते हैं, लेकिन रोशनी को अंदर ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली अंधेरा भाग जाता है। तो ऐसे ही ये सारे नेगेटिविटीज जो है अंदर जो खोखला बना रहा है अपने आप को, तो वो अंधेरा है, उसको हम कैसे भगाएं? केवल हमें प्रकाश ले आने की जरूरत है, पॉजिटिविटी के प्रकाश ले आने की जरूरत है, ये सारे नेगेटिविटीज भाग जाएंगे। और पॉजिटिविटीज में अगर देखा जाए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो इसीलिए अभी ये समय है टू रिचार्ज, रिफिल एंड रिफ्रेश। अगर आज सुबह के सेशन में हम सभी ने देखा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये शरीर जो है वो ह्यूमन फिजिकल शरीर है, लेकिन इस शरीर को जीव देने वाली, लाइफ देने वाली है आत्मा। अभी हमें आत्मा को एम्पावर करने की जरूरत है, आत्मा के अंदर इन सभी गुणों को भरने की जरूरत है, तब जाकर के हम अंदर से संतुष्ट, अंदर से भरपूर और अंदर से सशक्त हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन किन किन गुणों से भरे अपने आप को? लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे तो लिस्ट निकाला जाए तो मुख्यतः कहते हैं देयर आर 36 वर्च्यूज। सो एक एक को हम ध्यान दें और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, तो इससे और एक बहुत सुंदर तरीका है। आज सवेरे हम सभी को पता चला आत्मा सतोगुणी है ना, सात गुणों से भरपूर है। जैसे रेनबो के सात कलर्स है, ऐसे आत्मा के सात गुण है। इन गुणों को जब हम समझते हैं और अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा भरपूर महसूस करना शुरू करती है। ये सात गुण हैं, पीस, लव, पावर, ब्लिस, हैप्पीनेस, प्योरिटी एंड विजडम। सबसे पहली बात है शांति। आत्मा शांत स्वरूप कहा जाता है, लेकिन शांति के बारे में हम सब बहुत कुछ थोड़ा बहुत भ्रांति लेकर के घूमते हैं। देयर इज एन इल्यूजन अबाउट पीस। सोचते हैं कि शांति में बैठने से बोरियत फील होगा, वो करना क्या है वो समझ में नहीं आता, इट इज नॉट क्रिएटिव, इट इज नॉट, हम कुछ उसमें पा नहीं सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते शांति में बैठने से। ये बहुत सारी भ्रांतियां लेकर के घूमते हैं, लेकिन शांति एक शक्ति है। शांति में बैठना या शांति की अनुभूति करना एक आत्मा को सशक्त करने की बात है। जैसे कहा जाता है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जब पानी स्टिल होता है तो वो बहुत ही गहरा होता है। जब कोई वो अगर कोई बहुत सारा मिट्टी उस पानी में है, अगर कुछ पत्थर फेंकते हैं वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, वो मड से भर जाता है या कुछ गंदा हो जाता है, उस समय क्या करेंगे, पानी को जैसे उसको डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही सेटल करने दे देते हैं तो क्या होगा। अगर मिट्टी भरा पानी है उसको डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो सारा मिट्टी नीचे सेटल हो जाता है और पानी शुद्ध पानी ऊपर नजर आता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी बातें जब होगी, जब उस समय जब हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित करते हैं, शांति की स्थिति में, तो धीरे धीरे वो सारे कुछ थॉट्स वाइब्रेशंस सेटल होने के कारण से आत्मा में या मन में वो क्लैरिटी नजर आने लगता है। तो इसीलिए क्लैरिटी पाने के लिए शांति की शक्ति को अपनाना या फिर साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी है। पीस इज बीइंग काम एट द टाइम ऑफ अपहीवल्स, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिजॉल्व। शांति माना जब आप कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय अगर थोड़ा सा हम काम माइंड से अप्रोच करते हैं, अगर डर से, चिंता से या स्ट्रेस से हम अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा काम माइंड से अगर उस चीज को अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली नजर आने लगता है। When the chaotic sound of wasteful and negative thoughts have become quiet, you will be able to create peace all around. जब हमारे अंदर के negativity और waste settle हो जाता है, तो positivity के positive vibration को हम फैला सकते हैं। वैसे तो संसार में शांति हम अपेक्षा करते हैं, वो संसार में शांति स्थापित करना है तो कहां से हम शुरू करें। शांति के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किया जाता है इस संसार में, हम पीस कैसे लाएं? लेकिन शुरुआत कहां से लाएंगे, अपने मन से। मन ऐसे सशक्त हो, शांतिपूर्ण हो, तो जरूर हम संसार में वो शांति में संसार स्थापन जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, पीस इज द इनर साइलेंस फिल्ड विद ब्लिस। साइलेंस जो है, शांति जो है, वो खोखला नहीं है या फिर बोर नहीं है उसमें। शांति जैसे परमानंद की अनुभूति जहां करते हैं, वो शांति में बैठकर ही वो परमानंद की अनुभूति हम कर सकते हैं। वेयर वी कैन एक्सपीरियंस एस्टेसी या ब्लिस, दैट इज पीस। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ एज अ पीसफुल बीइंग डिटैच फ्रॉम द रोल ऑफ डूइंग। वो शांति हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, अपने आप को डूइंग से डिटैच करने की जरूरत है। हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं है, है ना। लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ह्यूमन डूइंग के आधार से। जब भी हम अपने आप का परिचय देते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोफेशन से हम अपने आप का परिचय देते हैं, क्या हम कर्म करते हैं, क्या हम काम करते हैं, ह्यूमन डूइंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उस वो जो प्रोफेशन है या जो भी कर्म है वो एटर्नल नहीं है, हमेशा आत्मा के साथ नहीं चलता। इसीलिए वो जब भी वो या प्रोफेशन छूट जाता है, अपने या रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर बहुत घबराहट होती है, या फिर हम कहे पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेस हमारे अंदर आता है, वो फिर वो स्टेबिलिटी हम जीवन में महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके बजाय, ह्यूमन डूइंग के बजाय, हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग के रूप में, हम मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, वो ऐसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और दूसरी शक्ति है या दूसरा गुण जो आत्मा का है वो है स्नेह। स्नेह से अपने आप को भरपूर करने की जरूरत है। Why? Because love makes effort easy. कहा जाता है जहां मेहनत है, जहां मोहब्बत नहीं है वहां मेहनत बहुत लगता है, है ना? जहां अगर आप प्रोफेशन से बहुत प्यार है, जो काम कर रहे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो लेबर नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, वो एंजॉय आप करते हैं। ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं वहां अगर स्नेह प्यार है उस कर्म के प्रति, वहां लेबर नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती। तो लव मेक्स एफर्ट इजी, लव मेक्स यू फ्री फ्रॉम वरी एंड ब्रिंग्स अ नेचुरल एक्सपीरियंस ऑफ पीस। जहां कर्म के प्रति या फिर इंसान के प्रति वो निस्वार्थ स्नेह है, तो वहां फिर चिंता, भय, तनाव, ये सभी चीजें नहीं होती। इसीलिए स्नेह से अपने आप को भरने की जरूरत है। लाइफ विदाउट लव इज लाइफ विदाउट होप। अगर आत्मा में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो होप, लाइफ के प्रति जीने की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर होप, वी विल लूज होप। सो इवन फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव empowers the soul. थोड़ा बहुत किसी ने आकर के थोड़ा पैट कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, स्माइल कर दिया, तो बहुत empowered फील करते हैं। अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई आकर के आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया, दो अच्छे बोल नहीं बोले, बहुत दुख महसूस होता है, है ना? थोड़ा बहुत प्यार मैंने महसूस कर लिया एक दूसरे से, वो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, और फिर और ज्यादा मेहनत करने की वो इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसीलिए इवन फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव एम्पावर्स द सोल। लव हैज द पावर टू हील। प्यार ऐसी शक्ति है आत्मा को हील कर लेती है। इसलिए कहते हैं जब भी कभी कोई डिप्रेशन में होते हैं तो उनको कहा जाता है उनसे अच्छी रीति बात करें, उनको स्नेह दिखाएं, प्यार दिखाएं। प्यार से जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो सब प्रकार से वो आत्मा हील कर लेती है। लेकिन विडंबना क्या है, यहां समस्या क्या है? प्यार के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन्स हैं। देर आर फोर लेवल्स ऑफ लव। लव इज मिस्टेकन फॉर डिजायर। पाने की इच्छा जो है हम मिस्टेक कर लेते हैं लव से। लव इज मिस्टेकन फॉर अटैचमेंट। मोह, शायद प्यार वही है जहां मोह है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। लव इज मिस्टेकन फॉर डिपेंडेंसी। अगर दो लोगों के बीच में इतना कुछ प्यार है, वो डिपेंडेंसी में कैसे बदल जाता है कि ये बोल निकलते हैं, आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूं, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। तो वो डिपेंडेंसी प्यार नहीं है, वो बंधन है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब संबंध बंधन में बदल जाता है, वहां उससे छुटकारा पाना पसंद करेंगे, है ना? इसलिए डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां बंधन महसूस करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं attachment या dependency या desire to achieve something, expectations है, इसके कारण से वो अंदर से heal करने के बजाय वो और ही आत्मा को deplete कर रहा है। जो चौथी बात है, love is mistaken for identification। अगर position के प्रति, सीट के प्रति मेरा प्यार है तो आइडेंटिफिकेशन है। आई एम आइडेंटिफाइड एज सो एंड सो, तो फिर ईगो बढ़ जाता है। कहीं भी ये चार चीजें अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं वो कमजोरी है। स्नेह, वो कौन सी स्नेह, किस प्रकार का प्यार होना चाहिए, वो सही प्यार किसको कहा जाता है। लव इज द एक्शन ऑफ गिविंग वेयर देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ एनी डिजायर। निस्वार्थ भाव से जब एक दूसरे को स्नेह प्यार करते हैं, टोटल एब्सेंस ऑफ एनी डिजायर ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न एंड देयर इज द इंटेंशन टू बेनिफिट द अदर, केवल देने की भावना है। वेयर देयर इज एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट एंड फ्रीडम, ऐसे निस्वार्थ स्नेह प्यार एम्पावर करने वाली चीज है। लेकिन वो देने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना, या फिर लेने की भावना रखते हैं, मुझे स्नेह चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, शाबाशी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, केवल चाहिए चाहिए बोलते रहेंगे तो फिर वहां संतुष्टि नहीं होगी। देने की जरूरत है, देने के लिए हमारे पास वो स्टॉक जरूरी होता है। और वो स्टॉक कैसे बढ़ाएं, ये सभी गुण, हम उन सभी गुणों के स्टॉक हम कैसे बढ़ाएं आगे जाकर के देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से स्टॉक आत्मा के अंदर रिफिल करने की जरूरत है। यहां रिफिल शब्द से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अवेयरनेस, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है, वो स्नेह स्वरूप है, शांत स्वरूप है ओरिजिनली। हम कहीं से प्यार ले आकर के भर नहीं रहे हैं, हम केवल उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूं, स्नेह से भरपूर हूं। तो अवेयरनेस, इन चीजों का जब हमारे पास अवेयरनेस होगा तो फिर से उन गुणों को, शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं, अपने आप को भर सकते हैं। इसलिए लाइफ विदाउट लव लूजेस इट्स मीनिंग, लाइफ विदाउट लव लूजेस इट्स मीनिंग, इंटेलिजेंस विदाउट लव, इंटेलिजेंस विदाउट लव मेक्स इट पवर्स, मीन्स विकृत हो जाते हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है वो इंटेलिजेंस। फेयरनेस एंड जस्टनेस विदाउट लव, जस्टिस विदाउट लव मेक्स इट इनफ्लेक्सिबल और स्टबर्न, जिद्दी। माई वे इज द हाईवे, मेरे जैसा, मैं जो बोलूंगा उसी जैसे करना होगा, ये जिद्दी आ जाता है, जिद्दीपन आ जाता है। डिप्लोमेसी एंड टैक्ट विदाउट लव, डिप्लोमेसी एंड टैक्ट विदाउट लव मेक्स यू अ हिपोक्रेट, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना, भाकंडी। सक्सेस विदाउट लव, सफलता है लेकिन उसमें प्यार नहीं है तो क्या होगा, टर्न्स यू अरोगेंट, अहंकारी बना देता है। वेल्थ विदाउट लव, धन प्यार के बिना मेक्स यू मीन एंड टाइट फिस्टेड, कंजूस बना देता है, है ना। पॉवर्टी विदाउट लव, गरीबी प्यार के बिना टर्न्स यू इनटू रेडिकल, उग्र, और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, मैं मुझे क्यों नहीं मिला, इनको क्यों मिला। ब्यूटी विदाउट लव, makes you capricious, that is manmoji. वो कर देता है. Authority and power without love. Authority and power without love lead to tyranny. अत्याचारी. Labor without love. मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है उसमें. Turns you into a slave. गुलाम बना देता है. Naivety. मतलब भोलापन, अज्ञानता. Without love deprives you of values. ये सारे values, virtues है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे धारण कर सकती हूँ इन बातों को. Prayer and worship without love turns you into egotist. मतलब self-centric, मैं हूँ, मैं ही जो कर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये हूँ मेरा मैंपन. Faith without love turns you into a fanatic. कट्टरपंथी बना देता है ना. तो ये हमें समझने की जरूरत है. जितना हमारे जीवन में स्नेह की शक्ति बढ़ता जाता है, ओवरऑल हमारे जो पर्सनालिटी है वो विकसित होता जाएगा. तीसरी बात है विजडम, नॉलेज, ज्ञान. विजडम इज द नॉलेज ऑफ डेंजर बट नॉट हैविंग फियर. समझ, डेंजर है इसका ज्ञान है लेकिन डर नहीं है अंदर. दिस इज अ रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस ब्लॉसम्ड इनसाइड यू. अनुभव है आत्मा के अंदर जिसके आधार से वो रिचनेस है, एनरिचमेंट है. विजडम रिकॉग्नाइजेस द राइटनेस ऑफ लाइफ. क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसकी समझ है. इट इज टू फॉलो योर इंट्यूशन वंस something has become clear, disregarding the illusion of doubt. So this is a balance of IQ and EQ. Wisdom mana balance hai, gyan mana balance hai IQ aur EQ ka. So atma originally gyan swaroop hai, keval us gyan ko hame fir se us awareness mein lane ki zarurat hai. और चौथा गुण है प्योरिटी. आत्मा का ओरिजिनल, आत्मा ओरिजिनली शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है. प्योरिटी इज द रियल ब्यूटी ऑन अवर फेसेस एंड लाइट इन अवर आईज. इसीलिए जब भी आत्मा के अंदर पवित्रता ज्यादा है तो उसके चेहरे पर वो इनोसेंस और वो प्रकाश, चेहरे पर वो प्रकाश नजर आता है. Purity means no waste and weaknesses. Purity mana andar kisi ke prati durbhavna bhi na ho, kisi ke prati waste thoughts na ho, koi bhi prakar ke weaknesses, irshya, dvesh, grina, agar andar nahi hai, to mana jayega ki atma pavitra hai. Purity is expressed as good wishes and pure feelings. हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हमारी शुभ भावनाएं होगी. परमात्मा का हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होती है. भले वो कैसे भी आत्मा क्यों ना हो तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होती है. तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रति क्या हमारी शुभ भावना हो सकती है. शक्तिशाली आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति वो शुभ भावना रख सकती है. सो प्यूरिटी इज अ फाउंडेशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. पवित्रता सुख शांति की जननी है, वो फाउंडेशन है हमारे जीवन का. जहां प्यूरिटी है, शांति ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में, खुशी हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली हम अनुभव करते हैं. और पांचवा गुण है जो आत्मा का निजी गुण, वो है शक्ति, डिटर्मिनेशन. जो करने की चाह, अगर डिटर्मिनेशन है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. ईच वन ऑफ अस एज द लिमिटलेस पोटेंशियल. इसलिए कहा जाता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान केवल अपने शक्तियों के 5% यूज करता है 95% जो शक्ति है वो दे गो अनयूज्ड। तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, पोटेंशियल है, उसको टैप करने की जरूरत है और उसको यूज करने की जरूरत है। केवल हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है बस, और हिम्मत। एक ऐसे काफी साल पहले 1954 की बात है, एक बहुत अच्छे एथलीट थे, तो रोजर बैनिस्टर, तो उन्होंने 4 माइल जो दौड़ है, ये 1 माइल दौड़ है, वो केवल 4 मिनट्स के अंदर उन्होंने उसको पूर्ण किया था। लेकिन दूसरे जो ऑस्ट्रेलियन जो एथलीट थे, तो उनका कहना ये था कि वो बैरियर जैसा दिखता था, वो इम्पॉसिबल जैसा दिखता था, वो 1 माइल का जो दौड़ है 4 मिनट्स के अंदर मैं पूरा करूं, ये इम्पॉसिबल लगने लगा था। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसी रिकॉर्ड को उसने ब्रेक किया था। और जहां डिटर्मिनेशन होता है, सभी बैरियर्स, सभी रिकॉर्ड्स जो इम्पॉसिबल लगता है, उन सभी बैरियर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। केवल अंदर दृढ़ता की जरूरत है, वह हिम्मत की जरूरत है। सो डू नॉट रेस अगेंस्ट एनीवन, रेस अगेंस्ट योरसेल्फ। अंदर, हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और वी हैव टू रेस अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ। सो ये कैपेसिटी अपने अंदर है, उसको हमें फिर से जागृत करने की जरूरत है। और 6th क्वालिटी या गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण है, वो है हैप्पीनेस, है ना। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुम हुआ है जीवन में वह हैप्पीनेस। फिर से कैसे हम उसको लेके आए, इट इज एन एबिलिटी टू क्रिएट थॉट्स दैट सस्टेन एनर्जी एंड स्पिरिट टू सी थिंग्स एंड पीपल इन अ पॉजिटिव वे। जितना हम लाइफ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, उतना हम खुश रह सकते हैं। हम अपने जीवन को अगर देखें, जो भी समय बीता है, चाहे 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी जीवन बीता है, उसमें अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है, दुख के क्षण ज्यादा थे या सुख के क्षण ज्यादा थे, क्या कहेंगे? दुख के क्षण ज्यादा थे या सुख के क्षण ज्यादा थे जीवन में, क्या कहेंगे? सुख के क्षण ज्यादा थे, फिर भी हम वो पर्टिकुलरली दुख के इंसिडेंट्स पकड़ करके क्यों बैठे हैं? फिर बार बार वही सोचते हैं जो दुख के क्षण है। जैसे मान लीजिए हर रोज कोई टाउन सर्विस जो बसेस जाते हैं, तो उसमें नौकरी के लिए जा रहा है, 9 बजे की बस वो पकड़ रहा है, तो रोज ये टेंडेंसी हो जाता है ना, तो उसी समय में जो ट्रैवल करते हैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाता है और बातें करना शुरू करते हैं। 1 घंटे का ट्रैवल है, तो वो बातें करते हुए अच्छी तरह समय बिता रहे हैं, तो 30 डेज बहुत अच्छे बीते। ऑन द 31st डे कुछ ऐसे बहस हो गया, तो ठीक है, फिर बाद में उसको रिजोल्व भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर ऐसे जीवन चलता रहा। लेकिन 3 मास के बाद या कुछ समय के बाद जब भी वो याद करेगा, वो 30 डेज याद आएगा या वो 1 दिन जहां बहस हुआ था वो याद आएगा? वो 1 दिन जहां थोड़ा बहुत लड़ाई भी नहीं, थोड़ा बहुत बहस हुआ था, तो वो याद रहेगा। लेकिन 30 दिन जो अच्छी तरह एंजॉय करके अच्छे समय बीते थे, उसको भूल ही जाते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या मैं भी ऐसा कर रही हूं? इज इट वर्थ इट? जब तराजू पर डालेंगे 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस और 1 डे ऑफ लिटिल बिट ऑफ सॉरो, कौन सा भारी है, कौन सा भारी है, है ना? तो उसके बजाय ये 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस, इसको याद करने के बजाय ये हम बार बार रिवाइंड हो रहा है मन में, बार बार रिवाइंड हो रहा है ना, तो उसको वहां फुल स्टॉप लगा करके जीवन में जो भी अच्छी बातें घटी है तो उसके बारे में सोचने की जरूरत है। पॉजिटिव दृष्टिकोण जितना हम रखेंगे जीवन में उतना हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। सो नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट, है ना? हम परमिशन देते हैं दूसरों को मुझे हर्ट करने की, अगर मैंने वहां परमिशन नहीं दी, अलग सोच रखी, अलग दृष्टिकोण रखा, तो फिर मैं वो दुख अनुभव नहीं कर सकती हूं। सो वी आर द मास्टर्स, वहां पहुंचते हैं। फिर सातवां गुण है ब्लिस, आनंद। ये पहले जो भी छह गुण हमने देखा उसका अपोजिट जरूर है, हैप्पीनेस का अपोजिट, खुशी का अपोजिट है दुख, शक्ति का अपोजिट है निशक्ति, शांति का अपोजिट है अशांति, लेकिन ब्लिस या आनंद का अपोजिट कुछ है ही नहीं। आनंद माना परमानंद की स्थिति, जहां सुप्रीम ब्लिस कहते हैं, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। ब्लिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सेंशियस हैप्पीनेस, कर्मेंद्रियों के आधार से जो हम सुख पाते हैं उससे ऊपर है ये आनंद की स्थिति। इसलिए कहते हैं सुपर सेंशियस जॉय, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, इंद्रियों के सुख से भी परे है अतीन्द्रिय सुख। सो ब्लिस इज एक्सपीरियंसिंग द स्टेज ऑफ जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए उस मुक्त स्थिति का अनुभव करना, वो ब्लिस या आनंद की स्थिति है। तो इन सभी सातों गुणों को अनुभव करने के लिए कौन अनुभव करता है? आत्मा अनुभव करती है ना। तो आत्मा हम सभी के, जब भी हम कर्म करते हैं, अलग अलग एरियाज है हमारे लाइफ के, ये सब एरियाज हम कवर करते हैं। कभी हमें बहुत सारे रोल्स निभाना पड़ता है। अगर कोई महिला है, महिला अपने परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है, फ्रेंड्स, हॉबीज, कोलीग्स, इस चित्र में जो देख रहे हैं अलग अलग एरियाज है हर इंसान का। अगर हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं लेकिन कभी हम शरीर के बारे में ध्यान दे रहे, कभी बच्चों के बारे में ध्यान रहे, हॉबीज, ये अगर ऐसा कर्म करते चले तो क्या होगा? ये चित्र कैसा है? बहुत हैपजॉर्ड है ना, बहुत हॉचपॉच है, तो इसीलिए कंफ्यूज्ड है, इसीलिए हम ज्यादा कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए खोखला, बहुत जल्दी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। एनर्जी कहां से मिलेगा? केवल शारीरिक शक्ति नहीं है ना, रात को अगर थके हुए जब हम घर आते हैं, एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर बोलते हैं तो बोलेंगे कि मैं तो बहुत थका हुआ, जो भी देखेंगे कल देखेंगे। अगले दिन जब उठते हैं तो शक्ति कहां से आती है? अगले दिन सुबह शक्ति कहां से आया? रात की नींद से फिर से ब्रेन रिजनोवेट हुआ, फिर शक्ति मिल गई। तो ब्रेन को रिजनोवेट किया तब जाकर के फिर वो एनर्जी मिली, फिर कर्म करने की ताकत मिल जाता है। लेकिन अगर हम अपना अप्रोच थोड़ा सा सहज रखते हैं, अगर बार बार सुबह से शाम तक ऐसे भागते रहेंगे अलग अलग एरियाज को देखभाल करने के लिए, तो कंफ्यूज्ड रहेंगे, बहुत जल्दी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इस चित्र में जो देख रहे हैं, बहुत इजीली बार बार जब हम अपने आप के प्रति फोकस करते हैं, प्रोफेशन में कुछ कर्म किया, तुरंत बाद में हम फोकस किया अपने आप के ऊपर, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया, फिर फोकस किया अपने आप के ऊपर, थोड़ा और कर्म किया, फिर अपने ऊपर फोकस किया। तो बार बार जब आत्मा को रिचार्ज करते हैं तो आत्मा भरपूर महसूस करती है, वो डिस्चार्ज अनुभव नहीं करती। तो बार बार आत्मा, इसीलिए यहाँ इस संस्था में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। बीच बीच में आपने सुना होगा, बीच बीच में सॉन्ग्स बजाया जाता है, वहां सब कुछ डिटैच करके फिर एक मिनट के लिए हम परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। तो दिस इज रिचार्जिंग द सोल। हम कर्म करते समय भी कहीं भी हो, लेकिन पुनः हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं तो जरूर हम रिचार्ज हो सकते हैं। तो अपने आप के साथ कनेक्ट होना माना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, उस अवेयरनेस में रहना, उस स्मृति में रहना, मैं आत्मा क्या हूं, आई एम अ यूनिक सोल, मेरे जैसे कोई भी और नहीं है। जब भी हम कंपेयर करने लगते हैं या चाहते हैं कि उस जैसे मैं बन जाऊं, तो वहां आत्मा डिप्लीट होना शुरू होता है। हर आत्मा यूनिक है, हर इंसान यूनिक है और हम सभी इक्वल है। जैसे आकाश में तारों को देखते हैं, ऐसे हम सभी धरती के सितारे हैं। केवल चमक के अंतर है, लेकिन फिर हम सभी इक्वल है। जहां हम इक्वल समझते हैं वहां डर नहीं लगता। इक्वल का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं रखें, रेस्पेक्ट जरूर रखना है, लेकिन वहां डर नहीं रहता जब हम इक्वल समझते हैं। हर आत्मा वैल्यूबल है, मैं भी आत्मा वैल्यूबल हूँ, इन सभी गुणों से, वैल्यू से मैं आत्मा भरपूर हूँ, मैं आत्मा मास्टर हूँ, मेरे परमिशन के बिना कोई अफेक्ट मुझे नहीं कर सकता, मैं राजा हूँ। इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा राज, यहाँ आत्मा का सीट जो यहाँ है वो वहां बैठ करके कंट्रोल करती है सब कर्मेंद्रियों को। आत्मा क्रिएटर है, रचयिता है, हम कोई क्रिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को। हम ये नहीं कहेंगे कि विचार आ गया, नहीं, विचारों को भी हम क्रिएट करते। वी आर द मास्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स एंड वी आर ऑल कनेक्टेड एंड आई एम केपेबल एंड पावरफुल। हर आत्मा समर्थ है, मैं आत्मा समर्थ हूँ, केपेबल हूँ, केवल अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए कहते स्वमान से समर्थि आती है, जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो समर्थि ऑटोमेटिकली आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। आत्मा प्रकाश है, यहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप लाइट है। और लास्ट बात है, आत्मा इटर्नल है, अनादि अविनाशी है। जब हम इन बातों को समझते हैं और इसमें विश्वास करते, बिलीफ सिस्टम ही बदल गया ना। अभी तक हम समझते थे तो मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं, मैं, मेरा नाम ये फलाना है, मेरा जेंडर ये है, मेरी नेशनलिटी फलाना है, जो भी आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे। लेकिन जब हमने ये बिलीफ सिस्टम ही बदल दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा के अंदर ये सब गुण है और आत्मा की ओरिजिनलिटी ये सब है, आत्मा यूनिक है, इक्वल है, वैल्यूबल है, तो ये जब बिलीफ सिस्टम ही बदल गया तो बहुत जल्दी आत्मा ड्रेन नहीं होती। कर्म करते समय भी हम उसको रिचार्ज्ड रख सकते हैं, फुल रख सकते हैं। और साथ साथ एक तो होता है आत्मा की खुद की शक्ति और दूसरी बात है वो परम सत्ता के साथ कनेक्शन, पावर सोर्स के साथ कनेक्शन। जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो पावर सप्लाई को ढूंढते, वो पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो फिर वायर्स के द्वारा आकर के मुझे वो सॉकेट से मिल रहा है, वो पावर है जो मोबाइल को रिचार्ज कर रहा है। ऐसे ही आत्मा को रिचार्ज और रिफिल करने के लिए वो पावर सोर्स है परमात्मा। लेकिन परमात्मा के बारे में ज्यादा कल हम समझेंगे राजयोग शिविर में। तो परमात्मा के साथ कन्वर्सेशन, बातें करने की जरूरत है, परमात्मा के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। और परमात्मा के साथ हम सब सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद है और बहुत बिल्कुल सुरक्षित हम महसूस करते हैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के। और कोई डर नहीं है, वैसे तो क्या कहते हैं, परमात्मा से तो डरो, भगवान से तो डरो। डर के कारण से ये लगता है कि कहीं भगवान मुझे श्रापित ना कर दे, तो भगवान कभी श्राप नहीं देते। डर से हमें भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, प्यार से याद करना है, क्योंकि भगवान कभी भी हमें शिक्षा नहीं देंगे या फिर सजाएं नहीं देंगे या श्राप नहीं देंगे। और शक्ति की अनुभूति हम करते हैं परमात्मा के कनेक्शन के साथ। तो इसीलिए एक है हम खुद आत्मा के, आत्मा खुद के अंदर ये सारे गुण और शक्तियां हैं। केवल उस अवेयरनेस में रहेंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे तो हम रिफिल अपने आप को कर सकते, समर्थ्य हम महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात है परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के फिर से हम आत्मा को भरपूर महसूस कर सकते हैं। इन सर्व गुणों से जब हम संपन्न होंगे, कोई भी वीकनेसेस हमारे अंदर नहीं होगा, फिर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो दुखदायी हो। तो मेडिटेशन से इन सर्व गुणों को, शक्तियों को हम फिर से अपने अंदर रिफिल कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए थोड़े समय के लिए 5 मिनट हम अपने आप के साथ कनेक्ट करें और परमात्मा के साथ कनेक्ट करें और अपने आप को भरपूर रिचार्ज करें। आसपास के वातावरण से आवाजों से अपने आप को डिटैच करें। और खुद पर फोकस करें, मन के स्क्रीन पर एक चमकता हुआ अजब सितारा, अनादि अविनाशी शक्ति ये महसूस करे, मैं सचमुच अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर कर्म कर रही हूं। इस इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है, लेकिन मैं आत्मा मालिक बहुत ही वैल्यूबल गुणों से भरपूर सतो गुणी हूं। ब्रेन के बीचों बीच अपने प्राइवेट कमरे में बैठकर मैं आत्मा आंखों की खिड़कियों से देखती हूं। इन आंखों द्वारा बाहरी जगत के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ता है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ। ये शब्द आवाज आवाज की दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन कानून द्वारा जुड़ रहा है। मुख द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के बिना कुछ कर्म नहीं कर सकती, लेकिन केवल शरीर आत्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर के द्वारा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूं। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा निजी स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल रही है। इस स्थिति में स्थित होते ही सारी अशांति दुख दर्द मिटता जा रहा है। मैं आत्मा और अपनी ओरिजिनल स्थिति प्रकाश स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। कंप्लीटली एनर्जाइज्ड कंप्लीटली completely empowered. आत्मा की शक्तियों के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहा है। और पूरे वातावरण में भी फैल रहा है। शांति के प्रकंपन, शक्ति के प्रकंपन, बार बार ऐसे अपने साथ कनेक्शन जोड़कर खुद को प्रकाशित, सशक्त और रिफ्रेश करते रहे। ओम